ते सेवने तपः प्रीतम् प्रीतिम् परीक्षन् श्री कृष्णो वृषभानुपुरम् ययौ। इन कैसे गए भगवान राधा के घर में, स्त्री का वेश धारण करके। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया। चलते समय उनके पैरों में मधुर झनकार हो रही थी, कटी की करधनी में घंटिकाओं की मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी, अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। अद्भुतम गोपिका रूपम चलन झनकार अनुपुरम किंकरे घंटिका शब्द अंगुली भूषितम। कलाइयों में रत्न के कंगन है, बाहों में भुजबंद है, कंठ में और वक्षस्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे हैं, और लाल सूर्य के समान शीत फूल से शोभित केश पासों की बेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। रत्न कंकण के योर है मुक्ताहार विराजितम बालार्क ताटम ताटंक लसन कबरे पास है कौशलम। नासिका में मोती की बुलाक खिल रही थी, शरीर की दिव्य आभा और स्निग्ध अलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के भव्य भवन को देखा। नाता मोक्त के दिव्याभम श्याम कुंतल संकुलम धृत्वा स वृषभानुश्चा मंदिरम संदर्शः। अब यहां पर राधा के भवन में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, और आखिर भगवान ने राधा रानी को देखा। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी राधा ने देखा। समागताम ताम मणि मंदिर आज रे तदर्थ राधा वृषभानु नंदिनी तेजसा तल्लल नाहर तत्किशो जाता स्वरम चंद्र मसे वे तारका। अब राधा जी जानती नहीं है कि कौन स्त्री है, लेकिन तुरंत ही सम्मान किया उस स्त्री का, दोनों बाहों से आलिंगन करके दिव्य सिंहासन पर बिठाया और लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके सुंदर पूजन आरंभ कर दिया। विज्ञाय तद गौरव उत्तम महन उत्थाय दौरभ्याम परिरभ्य राधिकाम दिव्यासने स्थापे सुरलो श्लोक रीत्या जलाधिकम चारण महारत्वम। अब राधा ने कहा जानती नहीं कौन है, कहती है हे सुंदरी सखी तुम्हारा स्वागत है, मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है, तुम स्वतः आज यहां आ गई ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। स्वागतम ते सखी सुभेम नाम देयम बदा सुमेम भूरे भाग्यम ममे वाद्य भक्त्या गतया सुतः। भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता, तुम जहां तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वो नगर निश्चय ही धन्य है। तत्तमानं दिव्य रूपम दृश्यते नहि भूतले यत्र तं वर्तते शुभ्रो पत्तनम धन्यमेव तन्। हे देवी अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ, तुम किस कारण से आए हो यहाँ पर विस्तार से बताओ, मेरे योग्य जो कार्य हो वो तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। बद देवी सविस्तारम हे तुम आगमन से चाम मम योग्यम दियत कार्यम वक्तव्यम तत्त्वया खलु। तुम अपनी बांकी चितवन से मधुर वाणी से मनोहर मुस्कान से चाल ढाल से श्रीपति के समान दिखाई पड़ती हो, श्रीपति यानी कृष्ण के समान दिखाई पड़ती हो, ये मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम कृष्ण के समान मालूम पड़ती हो। कटाक्षेण सुदीप्त्या चं वचता सुस्मितेन वयं गत्या कृत्या श्रीपतिवन दृश्यते साम्प्रतं मया। हे सभी तुम रोज मुझसे मिलने के लिए आया करो, यदि ना आ सको तो मुझे अपना स्थान का संकेत बता दो कि मैं तुम्हारे पास आया करूं। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वो विधि सदा उपयोग में लानी चाहिए। नित्यम सभे वे मिलनाथ माव्रज चेत संकेत मलम विधेहि ये नैव संगो विधिना भवेधि विधिर्भवत्या सदा विधेय। हे सखी तुम्हारा ये शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि तुम मेरे प्रीतम ब्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी जैसी है जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है, अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। अई तुम अई तदात्मा परम प्यो में तदा कृते श्री ब्रज राज नंदन ये नव मे देवी हृतम तो चेत स्वयानंद देव मधुर दधामित। ये सुनकर माया से युवती का भी धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने राधा से इस प्रकार कहा। अब सुनो भगवान क्या कहते राधा से। एवं राधा विचा श्रुत्वा माया युवती वेदृवाच भगवान कृष्ण राधाम कमले लोचना। भगवान बोले हे रंभोरु नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। रंभोरु नंद नगरे नंद गे हस्त चोतरे गोकुले वस तिरमेस्ती नाम ना हम गोपे देवता। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप और गुणों का वर्णन सुना, अतः हे चंचल लोचनों वाली मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घर में चली आई हूँ। तंद्रूप गुण माधुर्यम श्रुतम मे ललिता मुखा तद्दृष्टुम चंचला पांगी तंग्रहे हम समागता। हे कमल लोचने जहाँ सुंदर लवंग लता की सुगंध छा रही है और कुंज पुष्प खिल रहे हैं वो तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों से देखा, इसके समान सुंदर इंद्र की पुरी भी नहीं है तुम्हारे नगर के समान। श्रीमन लवंग लतिका स्फुट मोदिनी नाम गुंजा निकुंज मधुपैध्वनि कुंज कुंज पुंजम दृष्टम श्रुतम नव नवम तब कंज नेत्रे दिव्यम पुरंदर पुरे पिनय समानम। इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ, परस्पर प्रीति करते हुए उपवन में शोभा पाने लगे। एवं तयोर मेलनम तम बभूव मिथिलेश्वर प्रीतिम परस्परम कृत्वा वने तत्रय विरेजतु। फूल की गेंद खेलते हुए दोनों हंसते और गीत गाते वन के वृक्षों को देखते इधर उधर विचरने लगे। हसंत्यो ते च गायन्त्यो पुष्प कन्दुक लीलया पश्यन्तो वन वृक्षांचा चेतुर मैथिलेश्वर। कला कौशल से संपन्न राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी में कहा। कला कौशल संपन्नाम राधाम कमल लोचनाम गिरा मधुरिया राजन प्राहेदम गोप देवता। गोप देवी बोली हे ब्रजेश्वरी नंदनगर यहाँ से दूर है, अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। दूरे वे नंदनगरम संध्या जाता ब्रजेश्वरी प्रभाते चागमिष्यामि तत्सकाशम न संध्याम। गोप देवी की बात सुनकर राधा के नयनों से तत्काल आंसू की धारा बह चली, रोमांच हो गया और कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े। श्रुत्वा तस्तु ब्रजेश्वरी निक्षिप्त सद्यो नयनाम संतति रोमांच हर्षोद्गम भाव समृता रंभे भूमा पतिता मरुधाता। ये देख सखियां तुरंत भजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी, वस्त्रों पर चंदन पुष्प के इत्र छिड़के और गोप देवी ने राधा से कहा। संकागता तत्र थगे गणास्वरम सुवेदियंत्यो ब्रजने व्यवस्थितां श्रीखंड पुष्प द्रव संजय तर्जितां सुकां जगाद राधाम नृपे गोप देवतां। गोप देवी बोली हे राधिके मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता ना करो, यदि ऐसा ना हो तो मुझे गाय की सौगंध है, गोरस की सौगंध है और अपने भाई की सौगंध है। प्रभाते आगमिष्यामि मासोकम कुरु राधिके गोसभासुर गोरसस्य सपतो मे न चेदिदम्। यो कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बनाकर नंद गोकुल को चले गए। एवं उक्त्वा हरि राधाम समाश्वास्यन पेश्वरे माया युवती वेशो तौयजो श्री नंद गोकुलम। अब क्या हुआ, रात बीतने पर माया से नारी का रूप धारण करने वाले श्री हरि राधा का दुख दूर करने के लिए ब्रजभानु भवन में गए। अथ रात्र्याम मितेतायाम माया क्रोशिन वपुर हरि राधा दुख प्रशांत करथम ब्रजभानो और गृहम ययौम। उन्हें आया देखकर राधा उठकर बड़े हर्ष के साथ भीतर लेवाले गई, आसन देकर विधि विधान के साथ पूजन किया। राधा समागतम वीक्षय समुत्थायाति हर्षिता दत्तासना विधाने में पूजयामासे मिथिलय। राधा बोली, हे सखी, तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई मानो खोई हुई वस्तु मिल गई हो। जैसे कुपथ्य सेवन से पहले तो सुख होता है और बाद में दुख भोगना पड़ता है। गलत चीज खा लो तो पहले अच्छा लगता है, बाद में बड़ा दुख मिलता है। उसी प्रकार सत्संग से पहले सुख होता है और बाद में बड़ा वियोग का दुख मिलता है। तो याद ना हम से दुखितासम तुयागतायाम सखी लब्ध वस्तुवन पूर्वं पत्तस्य कृतं सुखम यथा ततो दुखम तथा भामिनी मत प्रसंगतः। राधा की ये बात सुनकर गोप देवी अनमनी हो गई। गोप देवी क्या हो गई? अनमनी हो गई। राधा से कुछ नहीं बोली। किसी दुखिया की बात की, चुपचाप बैठी रही। गोप देवी को खिन्न जानकर राधिका ने सखियों के साथ विचार किया कि क्या हो गया, मेरे से कोई अपराध हो गया? सखियों से विचार करते हैं कि हमने कोई अपराध किया है क्या? फिर इस प्रकार कहा, इति श्रुत्वाक्यम विमना गोप देवता न किंचदूचे श्री राधाम दुखिते व्यवस्थिताम विज्ञाय खेद संपन्नाम राधिकाम गोप देवताम सखे भी समाचार्याथ जगाद स्नेह तत्पराम। श्री राधा बोली, हे गोप देवी, तुम अनमनी क्यों हो गई? हे कल्याणी, मुझे इसका कारण बताओ। माता ने कुछ कहा है या पति ने कुछ कहा, ननद ने कहा या सास ने कुछ कहा? यमना तुम कथम भद्रे वदमाम गोप देवते मात्रा भर्त्रा नानांद्रावा सस्वावा क्रोधे क्रोधे भर्तिता। किसी सौत के दोष से तुम खिन्न हुई हो, सौत के दोष से खिन्न हुई हो, या पति के वियोग से, या अन्यत्र चित्र लग जाने से तुम्हें खेद हो रहा है? पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष में तुम्हारा मन लगा है, इसलिए खेद हो रहा है तुमको? अपने क्या कारण है? रास्ता चलने की थकावट से तुम्हें खेद हो रहा है? शरीर में कोई रोग हो जाने से खेद हुआ है? अपने दुख का कारण शीघ्र बताओ। सपत्नी कृत दोषे सुभर्तुर विरहेण वा अन्यत्र लग्न चित्तेन यमना किं मनोहरे मार्ग खेदेन वा कच्चिन् बिहबला भूनृजाथवां शीघ्रं वदे महाभागे स्वस्य दुःखस्य कारणम्। किसी कृष्ण भक्त को छोड़कर या ब्राह्मण को छोड़कर जिस किसी ने तुम्हें कुछ गलत बात कही हो तो मैं उसकी चिकित्सा कर दूंगी। कृष्ण भक्त को छोड़ करके, ब्राह्मण को छोड़ करके मैं चिकित्सा कर दूंगी अगर कोई गलत बात किसी ने बोली है। कृष्ण भक्तम मृते विप्रम ये न के नापे कुत्सितम कथितम के तैरम भोरो तत्चिकित्सा करोमि हम। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी दे दू, घोड़ा दे दू तुमको, नाना प्रकार के रत्न दू, वस्त्र दू, धन दू, विचित्र भवन दे दू तुमको। गजास्वादीनि रत्नानि वस्त्राणि च धनानि च मन्दिराणि विचित्राणि गृहाणि त्वं यदि इच्छसि। धन देकर शरीर की रक्षा करना चाहिए और धन देकर निरंतर प्राणों की रक्षा करना चाहिए। जो बिना किसी कारण के मित्रता का निर्वाह करता है वही मनुष्य परम धन्य है। मैत्री स्थापित करके जो कपट करे उसको धिक्कार है। राधारण कहती हैं कि मेरा तुमसे कोई कपट नहीं है, जो मैत्री में कपट करे तो उसको धिक्कार है। उनका ये प्रेम पूर्ण वचन सुनकर गोप देवी के रूप में आए हुए भगवान उन राधा से हंसते हुए बोले। अब सुनो क्या बोलते हैं भगवान, सुनना ध्यान से। तस्या प्रेम वचः श्रुत्वा भगवान गोप देवता प्रसन्ना है राजेन्द्र श्री राधा कीर्ति नंदिनी। गोप देवी ने कहा, हे राधे, बरसाना की घाटी में जो मनोहर सकरी गली है उसी में होकर मैं स्वयं दधि बेचने जा रही थी। इतने में नंद जी के कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया। उनके हाथ में बंसी और बैत की छड़ी थी। उस रसिक ने लज्जा को तो छोड़ दिया और तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए एकांत वन में इस प्रकार कहने लगे, हे सुंदरी, मैं कर लेने वाला हूं, मैंने टैक्स लेता हूं मैं, अतः तू मुझे कर के रूप में दही का दान दे। राधे ब्रजम सानुगिरे सतीसु संकोच वीथे सु मनोहरासु यान्तिम सुतो माम दधि विक्रियार्थम रोध मार्गे नव नंद पुत्रहम बंसीधरो वित्र करा करे माम त्वरम गृहीत्वा बृहतम निलज्जः मह्यम करा दान धनाय दानम देहित जल्पन विपने रसज्ञः। मैंने कहा, चलो हटो, अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम जैसे लंपट को मैं कभी दान नहीं दूंगी। इतना कहते ही उन्होंने सिर पर से दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला। तुभ्यम न दास्यामि कदापि दानम स्वयं भवे गोरथ लंपटाए एवं मयोक्ते वचने थे भांडम नेता विस्तीर्णे कृते वाम सदधनहा। मटका फोड़कर और थोड़ी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नंदीश्वर गिरी की ओर ईशान कोण वाली दिशा की ओर चल दिए। इससे मैं बहुत अनमनी हो रही हूं। भांडम समेत्वा दधि किंच पीत्वा नितोत्तरीयम मम चेदुरीयम नंदीश्वरान्द्रिर्विधि सम्यकामे एनाहमाराध्य मनाश में जाता। आप निंदा कर रही हैं कृष्ण की, निंदा करें राधा की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण की निंदा करने लगे भगवान। अपनी निंदा करने जाति के ग्वाले हैं और रंग है काला कलूटा, धनवान नहीं है और वीर नहीं है, अच्छा चील नहीं है, अच्छा रूप भी नहीं है, ऐसे पुरुष पर तुमने प्रेम किया ये ठीक नहीं है। मैं कहती हूं तुम आज से शीघ्र ही कृष्ण को अपने मन से निकाल दो, कृष्ण का त्याग कर दो। जात्या स गोपा किल कृष्ण वर्णो अधनी न वीरो नहीं शील रूपा यस्मिन तुया प्रेम कृतम सुशीले तेजस निर्मोहन मज्जय कृष्णम। इस प्रकार बैर भाव से कठोर वचन सुनकर राधा को बड़ा विस्मय हुआ। कठोर बातें सुनी। अब सरस्वती का स्मरण करने लगी राधा रानी कि कैसे इससे बात करूं, अब तो दोस्ती बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन अब दोस्ती निभाना है तो कैसे बात करूं। सरस्वती का स्मरण करने लगी राधा जी, उनको तो बहुत गुस्सा आ गया राधा रानी को, अब कैसे मधुर वचन बोले तो सरस्वती का स्मरण कर रही राधा जी। स्थम सवेरम परो संवच सदाजाग्रत भानु नंदिनी सुविस्मिता वाक्य पदे सरस्वती पदम स्मयंती निजगाद ताम प्रति। अब राधा ने कहा, अब सरस्वती की कृपा से उनको ऐसी बुद्धि मिली कि प्रेम पूर्वक समझा रही है। जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा शिव आदि देवता पंचाग्नि तपस्या करते हैं, दत्तात्रेय सुखदेव कपिल अंगिरा जिनके चरण के का सादर स्पर्श करते हैं, तुम उनको कह रही हो कि कैसे तुम कह रही हो। यत प्राप्त ये विधिहर प्रमुखा तपंती वहनोत् परमिया निज योग्य रीत्याम दत्ता सुख कपिल आसुरी रंगिरायन पादार बिंद मकरंद रजा प्रशंती। उन्हें अजन्मा परिपूर्ण देवता लीलावतार धारी सर्वजन दुख हारी भूतल भूरी हार हरणकारी सत्पुरुषों के कल्याण के लिए प्रकट हुए आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा कैसी करती हो, तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। तम कृष्णमादि पुरुषम परिपूर्ण देवम लीलावतार मजमाति हरम जनानाम भू भूरी हार ये भू भो भोरि भार हरणाय सताम सभाय जातम विनिन्दसिकतम सखी दुर्विनीते। ग्वाले सदा गौओं का पालन करते हैं। तुम कहते हैं ग्वाला जाति बड़ी खराब होती है, नीच जाति है, तो कहती हैं कि ग्वाले सदा गौओं का पालन करते हैं और गोरस की गंगा में नहाते हैं, गौओं का स्पर्श करते हैं, गौओं के नाम का जप करते हैं। इतना ही नहीं, दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। तो मैं समझती हूँ पृथ्वी पर गोप जाति से बढ़कर कोई दूसरी जाति है ही नहीं। तुम कहते गोप जाति बड़ी नीच है, तो गोप जाति तो सबसे अच्छी जाति है। गा पालयं सततम रज सौगवाम चाम गंगाम स्पृशन्ति च जपन्ति गवाम सुनाम्नाम प्रेक्षन्ते हरनिश्मलम सुमुखम गवाम च जाते परान विदिता भवि गोप जाते। तुम उनको काला कलोटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की सुंदर कला का दर्शन करके उनमें मन लग जाने के कारण शंकर जी दूसरे सुंदर मुखों को छोड़ करके जटाजूट पीते, जटाजूट धारण करते हैं, हलाहल विष पीते हैं। उनकी सुंदरता में इतने पागल हैं शंकर जी, भस्म धारण करते हैं, कपाल धारण करते हैं, सर्प धारण करते हैं, उसी काले कलूटे के लिए पागलों की भांति दौड़ते फिरते हैं जिसको तुम काला कलूटा बताती हो। तत्कृष्ण वर्ण वीर सत्सुकलाम समीक्षय तस्मिन् विलग्न मनसा सुसुखम विहाय उन्मत्त व्रज धावती नीलकंठो बिभ्रत कपर्द विषय भस्म कपाल सर्पान। स्वर्गलोक सिद्ध है मुनि यक्ष मरुद्गण समस्त नर किन्नर और नागों के स्वामी भी भक्ति भाव से जिनके चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मी ऐश्वर्य पाते हैं उनको तुम निर्धन बताती हो, उनको तुमने निर्धन बताया। स्वर्लोक सिद्ध मुनि यक्ष मरुद्गणानां पाला समस्त नर किन्नर नागनाथां यत्पाद पद्म मणि संप्रणिपत्य भक्त्या लब्ध श्रिया किल बलिं प्रतिदोष्मि तस्मै। और तुमने उनको निर्बल बताया, तुमने कहा कि बड़े कमजोर हैं, बत्सासुर अघासुर कालियानाग बकासुर यमलार्जुन वृक्ष प्रणावर्त सकटासुर और पूतन आदि का वध उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला है जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के एकमात्र बनाने वाले हैं और विनाश करने वाले हैं, उनको तुमने निर्बल बताया। बत्ताघ काली बकार जो है धेनु का नाम आ चक्रवात सकटासुर है पुतनानाम ए साम्राज्य मत तस्य सो मुरारे या कोट सोन चियोन भवनाश हेतु। उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय हो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनमें जो है ना प्रेम नहीं है, वो बड़े कृतघ्न हैं। तो बताती हैं राधा बताती हैं शंकर ब्रह्मा लक्ष्मी बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से ज्यादा प्यारे नहीं हैं, इनसे भी ज्यादा भक्तों से प्रेम करते हैं और तुम उनको बताती हो कि कृतघ्न हैं। वे भक्ति से बंधे होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं और श्री कृष्ण समस्त लोगों के सज्जन सज्जनों के चूड़ामणि है। भक्ता प्रियो न विदिता पुरुषोत्तम संवर विधि न चरमा न चरोहिणे भक्तनु व्रजति भक्ति निबद्ध चित्तम चूड़ामणि सकल लोक जनस्य कृष्ण। भक्तों के पीछे पीछे चलते हुए अपने रोम में स्थित लोगों को पवित्र करते रहते हैं। वे परमात्मा अपने भक्तों के प्रति सदा अभिरुचि प्रकट करते हैं, अतः अत्यंत भजन करने वालों को भगवान मुकुंद मुक्ति अनायास देते हैं, भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति के बंधन में लिए स्वयं बंधना पड़ता है। गच्छन् निजं जनम अनु प्रपुनाति लोकान् आवेदयन् हरिजने सुरुचिं महात्मान् तस्मादतीव भजतां भगवान् मुकुन्दो मुक्तिं ददाति न कदापि सुभक्ति योगम्। गोपदेवी ने कहा कि उनकी भक्ति मत करो, तो कहते हैं भक्ति तो वो देते नहीं किसी को, मुक्ति तो दे देते हैं, अपनी भक्ति देते नहीं है, तुम कहते कि मैं भक्ति छोड़ दूं उनकी। गोपदेवी बोली, अब गोपदेवी क्या बोली, हे श्री राधे तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति से बढ़कर के है, अपनी वाणी और प्रवचन से वेद वाणी का अनुकरण करती हो, किंतु हे देवी, तुम्हारे बुलाने से यदि श्री कृष्ण सचमुच आ जाएं, तुम्हारी बात का उत्तर दें, तब मान लूंगी कि तुम्हारा कथन सच्चा है। राधे त्वदीयधिष्णाधिष्णम् हसन्तीम् वाणीम् प्रति प्रतुशूलेन विडम्बयन्तीम् अत्रागमिष्यति यदा हरि परेशः सत्यम् ददाति वचनम् तव देवी मन्ये। राधा बोली, हे सुंदरी, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाएं, तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूं, तुम्हें क्या दंड दूं, तुम बताओ। तो तुमको तो दंड देना पड़ेगा, तुम खुद ही बता दो तुम्हें क्या दंड दूं मैं। परंतु अपनी ओर से मैं कह सकती हूं, यदि मेरे स्मरण करने से वनमाली नहीं आएंगे तो सारा धन और ये भवन तुम्हें दे दूंगी मैं। अपनी तरफ से मैं बताती हूं, ये पूरा धन और भवन तुमको दे दूंगी अगर कृष्ण नहीं आए। अगर कृष्ण आ गए तो तुम्हारा क्या करूं, वो तुम बताओ। यथा गमिष्यति यदा हरि परेशः किं कारयामि भवतीं मदे तर्हि शुभ्रूं चेदागमो नहि भवेन्मनुमालिनः त्वं सर्वं धनं च भवनं च ददामि तुभ्यम्। नारद जी कहते हैं, राजन, राधा उठकर नंद नंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ गई और उनका ध्यान करने लगी। उनके नेत्र अब बंद हो गए, अब भगवान को मौका मिल गया, राजा रानी के नेत्र बंद हो गए। अथ राधा समुत्थाय नत्वा श्री नंद नंदनम अभिशासने दद्यौ ध्यानस्य मितैलोचना। अब श्री हरि ने देखा, प्रियतमा राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित है, उनके अंग अंग में पसीना आया, मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। ये देख अपना पुरुष रूप धारण करके, वो तो कहीं आना थोड़ी था उनको, कहीं से वहीं पर बैठे थे, अपना पुरुष रूप धारण कर लिया बैठे बैठे। भक्त वत्सल श्री कृष्ण सखियों के देखते देखते वहां प्रकट हो गए, प्रसन्नचित हो घन गर्दन के समान गंभीर वाणी में श्री राधा से बोले, उत्कंठिताम स्वेद युक्ताम बाष्पकंठीम प्रियाम हरि अस्पूर्ण मुखीम वीक्ष विप्रताम पौरुषीम तनुम पश्यन्ति नाम सखीनाम च सहता भक्त वत्सलम राधाम प्राह प्रसन्नात्मा मेघ गंभीर आगिराम। अब कृष्ण क्या कहते हैं, हे रंभोरु, हे चंद्र बदने, हे ब्रज सुंदरी सरोमणे, हे नूतन यौवन सालिनी, हे मानशीले, हे प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत यहां आ गया हूं। रंभोरु चंद्र बदने ब्रज सुंदरी से राधे प्रिय नवन यौवन मानशीले उन्मील नेत्रमपि पश्य समागतम माम तूर्णम त्वया मधुर्या जगिरोपहूतम। अब आंख खोलकर मुझे देखो, हे प्रीतम कृष्ण आओ, ये बात सुन करके मैं तुरंत यहां आ गया हूं। मैंने सुना उसी क्षण गोकुल को छोड़कर बंसीबट और यमुना तट से वेग पूर्वक दौड़ता हुआ यहां आया हूं। कितनी बातें बनाई है, कहां से आया हूं, दौड़ करके आया हूं, सुना तुम्हारी। आगच्छ कृष्ण इति वाक्यमताश्रितम् मे सद्यो विसृजन् गोकुले गोपवृन्दम् वंशी वटा च यमुना निकटात् धावन् तत्प्रीतये अथ ललनेत्र समागतोऽस्मि। मेरे आते ही कोई सखी रूप धारणी यक्षी थी, आसुरी थी, देवांगना थी या किन्नरी थी, पता नहीं कौन थी, तो मैं छलने के लिए आई थी, यहां से चली गई, जैसे मैं आया तो वो आगे वो चली गई। ऐसी नागिन पर तो मैं विश्वास नहीं करना चाहिए। मई आगत है सती गति गता सखी रोपणी काम यक्षासुरी सुर वधु के लेकिन न रोवाम मायावती खलय तुम भवतीम चतस्मान विश्वास एवं विदेय उरंग पत्न्याम। फिर राधा श्री हरि को देखकर उनके चरणों में प्रणाम करके परमानंद में निमग्न हो गई, उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया। अथ राधा हरिम दृष्ट्वा नत्वातं पादे पंकजं मुदमाभे परम राजन सद्या पूर्ण है मनोरथा। श्री नारद जी कहते हैं फिर श्री राधा श्री हरि को देखकर उनके चरण कमलों में श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे अद्भुत चरित्रों का जो भक्ति भाव से श्रवण करता है वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। एवं श्री कृष्ण चंद्रस्य चरितानि अद्भुतानि च या श्रुणोति नरो भक्त्या स कृतार्थो भवेत् नरः। इस प्रकार से बड़ा सुंदर चरित्र था श्री राधा रानी का तो आप लोगों ने सुना। आप किसी का कोई प्रश्न है कोई कुछ पूछना चाहते हैं या मैं प्रश्न करूं आपका प्रश्न
राधारानी
इनका प्रश्न है कि कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि राधारानी बड़ी हैं या कृष्ण बड़े हैं। राधारानी बड़ी हैं ये इस प्रकार से जो लोगों के दिमाग में आई बात उसका कुछ कारण है ऐसा नहीं है लेकिन कारण क्या है कि लोगों के दिमाग में ये बात आती है। इस ग्रंथ में भी एक वर्णन है राधा कृष्ण के विवाह का तो कल मैंने ये सुनाया था जनकपुरी में राधा कृष्ण का विवाह है तो उसमें वर्णन ये हुआ कि भगवान कृष्ण छोटे बालक हैं और नंद जी की गोद में वो जो है जाते हैं और नंद जी गौ में चराते हुए जाते हैं। भांडीर वन में गए तो मेघ जो है ना छा गए आकाश में बरसा हुई और नंद जी डर गए। उस समय राधा रानी आई तो बिल्कुल यौवन संपन्ना राधा रानी आई और नंद जी ने उनको देखकर के प्रणाम किया और फिर नंद जी ने कृष्ण को राधा की गोद में दिया कि तुम ले जाओ यही तुम्हारे पति हैं और प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। राधा रानी नंद जी को आशीर्वाद दिया। तो ये सोच करके कि इसका मतलब है कि राधा रानी बड़ी है लोग जो है ऐसा कहते हैं।